नमस्कार दोस्तों, आप सभी का पूरे दिल से स्वागत है मेरे शो में, जिसका नाम है सुनहरी यादें, मेरे यानी आभा के साथ। मेरे प्यारे दोस्तों, मैं शो पे आपको वो कहानियाँ सुनाऊंगी जो आपको अपनी सी लगेगी, जो आपको ले जाएगी उन पुरानी गलियों में, उन पुराने मकानों में जहाँ बसती है सुनहरी यादें। आज जो मैं आपको कहानी सुनाने जा रही हूँ, वो एक ऐसी कथाकार की है जिनकी कहानियाँ हंस कथा देश समेत सभी प्रतिष्ठित पत्रिकाओं में प्रकाशित होती रही हैं। इनके लिखे रेडियो नाटक पे भी आकाशवाणी में प्रसारित होते रहे हैं। और जो मैं आज आपको कहानी सुनाने जा रही हूँ, उसका नाम है पहला दिन। और मेरे एपिसोड का भी तो पहला दिन है ना। इस कहानी को हम दो पार्ट में सुनेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। ये कहानी है संयुक्ता की, जो अपने सपनों का पंख लिए बड़े अरमानों से अपने घर से निकलती है ऑफिस की ओर, जहां आज उसका पहला दिन था। संयुक्ता ने हैंडशेक के लिए दायां हाथ आगे बढ़ाया और बोली, यहां सेक्रेटरी पद पर उसकी नियुक्ति हुई है। सामने रिवॉल्विंग चेयर पर बैठे प्रौड सर्जन क्षण भर उसका हाथ पकड़े हुए सोचते रहे और फिर पूछा, संयुक्ता अग्रवाल? यस सर। और प्रौड सर्जन ने उसे बगल की कुर्सी की ओर इशारा किया। छोटा सा थैंक यू बोलकर वह उछल के बैठ गई। सेक्रेटरी का जॉब स्वीकार करने से पहले उसने बहुत सोचा विचारा था। उसके दोस्तों ने उसे तरह तरह से डराया था, लेकिन ये जॉब उसे आसानी से मिल रही थी। ये प्रौड सर्जन यानी चंद्रशेखर बजाज पार्थ अंकल के मित्र हैं। इन्हें कुशल और शार्प ब्रेन की लड़की सेक्रेटरी के तौर पर चाहिए थी, जो उन्हें कॉफी पिलाने से लेकर उनके दफ्तरी उलझनों पर भी विचार विमर्श कर सके। पार्थ अंकल ने संयुक्ता की सिफारिश उससे पूछे बगैर कर दी थी। प्रारंभिक फॉर्मेलिटीज पर भी उन्हें पूरी करने की जरूरत महसूस न हुई। इस तरह सूल्ले की तरह हाथ से टपक गई नौकरी को कोई इनकार करना मूर्खता ही समझेगा, और संयुक्ता मूर्ख नहीं है। शुक्रवार को पार्थ अंकल ने उसे लेटर दिया और सोमवार को उसे ज्वाइन करना था। दो दिन वो उधेड़ बुन में बैठी रही। इस तरह के बूढ़े बॉसों के विषय में, उनकी कुंठाओं के विषय में तरह तरह की कहानियां उसने सुनी थी। थोड़ा डर लग रहा था, मगर सोचा चलो देखते हैं। और अभी वह मिस्टर बजाज के बगल की कुर्सी पर बैठ गई। मिस्टर बजाज ने उसे कुछ भी नहीं पूछा, बस अपने आगे लगे फाइलों में एक फाइल खींची और देखते देखते दस्तखत करने लगे। संयुक्ता एक घंटे तक चुपचाप बैठी हुई थी, फिर कसमसाने लगी, कैसा बॉस है, एक बार मुड़कर भी नहीं देखता कि कमरे में कोई और भी है। फीमेल परफ्यूम की सुगंध उड़ उड़कर नथुनों में पहुंच तो रही होगी, फिर भी जैसे मानो किसी की उपस्थिति का उसे एहसास ही ना हो रहा हो। अरे वो सेक्रेटरी के तौर पर पहली बार आई है, उसे कुछ तो पूछना था, कहाँ से पढ़ी है, कौन सी डिग्रियाँ हैं, वगैरह वगैरह। विचित्र व्यक्ति है, या हो सकता है जानबूझकर अपने आप को व्यस्त दिखा रहा हो पहला इम्प्रेशन डालने के लिए। संयुक्ता तरह तरह की सोच में लगी हुई थी और मुंह बना रही थी। आज उसका पहला दिन था। उसे बॉस के बारे में कुछ भी मालूम नहीं था। बॉस का क्या स्वभाव है, उसे क्या पसंद है, सच में ये बातें पर्थ अंकल से उसे पहले ही पूछ लेनी चाहिए थी, तब वो बॉस के बारे में कुछ सही अंदाजा लगा सकती थी। संयुक्ता की बेचैनी से बेखबर बॉस अपनी फाइलों में अभी भी व्यस्त थे। एक घंटे बाद फाइलें खत्म हुई तो बॉस ने घंटी बजाई, चपरासी आया, उससे दो कॉफी मंगवाई। संयुक्ता ने फिर बुरा सा मुंह बनाया। बॉस ने उससे पूछा भी नहीं कि वो कॉफी पीती है या नहीं, और दो कॉफी मंगवा ली। उसे कॉफ़ी बिल्कुल अच्छी नहीं लगती थी। अब वह भला ना कैसे कहेगी, ना कहना अशिष्टता होगी। बॉस तब तक फ़ोन पे बिजी हो चुके थे। संयुक्ता को ये सब अपनी उपेक्षा लग रही थी। अरे एक डेढ़ घंटे से वह बैठी है, उसे कुछ काम तो देना था, नहीं तो कम से कम काम के विषय में कुछ पूछना या बताना ही चाहिए था। लेकिन क्या करे, नौकरी करने आई है तो जैसी स्थिति आएगी उसके अनुकूल व्यवहार करना ही पड़ेगा, यानी उसे झेलना ही पड़ेगा। वह बैठी बैठी चपरासी की प्रतीक्षा करने लगी। कि अब वह आएगा और कड़वा कड़वा सा कुछ लाएगा और वो कड़वी सी चीज उसे पीनी पड़ेगी। चपरासी ज्यादा देर नहीं वेट करने दिया उसे, वह शीघ्र आ गया। ट्रे में कॉफी पॉट, शुगर और अलग अलग पॉट रखे हुए थे। क्योंकि अब वो सेक्रेटरी है, उसे उठकर पूछना होगा, एक्सक्यूज मी सर, आप कितनी शुगर लेंगे? बॉस बताएंगे 2 चम्मच, तो वो 2 चम्मच शुगर डालकर उनसे कॉफ़ी बनाएगी। पर उसका सोचा हुआ रखा का रखा ही रह गया, उसे कुछ करना ही नहीं पड़ा। चपरासी ने बिना कुछ पूछे बिना शुगर की कॉफ़ी बॉस की ओर बढ़ा दी और उससे पूछा कितनी शुगर। वह कैसे बताती कि कितनी शुगर लेगी, उसने तो पहले कभी कॉफ़ी पी भी नहीं थी। कड़वी होगी, इसी संभावना से उसने कह दिया 2 चम्मच। चपरासी ने कॉफ़ी बनाकर उसके टेबल पर रख दी। अब उसे कॉफ़ी पीनी थी। उसने फिर एक बुरा सा मुंह बनाया, कैसा बॉस है, चपरासी से कह सकता था तुम जाओ ये कॉफ़ी बना लेगी, लेकिन नहीं, कितने प्रेम से बिना शुगर की कॉफ़ी पी रहे हैं। बॉस को स्वाद लेकर कॉफ़ी पीता देख उसने भी कॉफ़ी का मग होठों से लगाया, सच में कड़वा। वह हर घूंट के साथ पार्थ अंकल को गाली देने लगी, लेकिन पूरा मग पी भी गई। उसने सोचा इतनी देर में उसने पार्थ अंकल को कितनी गालियाँ दी होंगी, शायद 20-25 तो ज़रूर। यानी मौका पड़ने पे गालियाँ देने की तालीम भी उसमें है। अच्छी सेक्रेटरी में हर प्रकार के गुण होने चाहिए। मुंह बनाते बनाते अचानक उसके होंठ फैल गए। यस सर। बजाज साहब उसकी टेबल से सटकर खड़े थे, गौर से उसे देख रहे थे, आंखों में चंचलता थी। कुर्सी के नीचे संयुक्ता के पैर थरथराने लगे। झट से उठकर वो खड़ी हो गई, मुंह से खुद ब खुद निकल पड़ा यस सर। बॉस कुछ उसे यूं देख रहे थे और वो सोच रही थी बुढ़ा उसे देख के क्या सोच रहा होगा, सोचता होगा मेरी सेक्रेटरी खूबसूरत है। लेकिन संयुक्ता की सोचों के वाचाल होने से पहले ही बॉस के गले से गंभीर स्वर फूटा, मैं बाहर निकल रहा हूँ, जब तक न लौटूं यहीं रुकना, फ़ोन कॉल्स आए उन्हें रिसीव करना और मैसेज नोट कर लेना। यस सर। बिना कुछ सोचे समझे उसके मुंह से निकला, मानो सेक्रेटरी होने की तो उसे जन्म से ही आदत है, यस सर उसके मुंह पे बैठा हुआ था। अपनी बात कह के बॉस मुस्कुराए। कोई दोस्त उसके पास होती तो उसकी कमर पे थाप लगाकर कहती ये साला मुस्कुराता क्या धांसू है, लेकिन पास में कोई था नहीं, इसे यह सोचकर रह गई कि बूढ़ों की हंसी रहस्यमय है, कितनी बातें उसमें छुपी लगती है। और बॉस निकल गया। घड़ी में अभी 1:30 हुए थे। वह कमरे में अकेली थी, आराम से अपनी कुर्सी पर अधलेटी हो गई, टेबल के नीचे पैर पसार लिए, अपनी आंखें टेलीफोन पे जमा ली। बीच बीच में वो घड़ी की तरफ देख रही थी। घड़ी की सुइयां इतनी धीरे घूम रही थी कि पल भर को उसे लगा कि कहीं घड़ी खराब तो नहीं हो गई, लेकिन फिर उसने निगाहें फोन पे जमा ली, ऐसा ना हो कि घंटी बजे और वो मिस कर दे। फिर उसे हंसी आई, अरे घंटी बजेगी तो क्या आंखों से सुनेगी। फिर उसने अपनी आंखें फोन से हटा ली, वो थकने लगी थी। पल भर को उसने आंखें बंद की, मगर तुरंत लगा ये गलत है, सेक्रेटरी को आलसी नहीं चाक चौबंद होना चाहिए, कहीं इसी बीच बॉस आ गए तो, उसे सोता समझ लिया तो। लेकिन बैठे बैठे वो उबने लगी थी। वह कुर्सी खिसकाकर बाहर निकलकर आई, छोटे से केबिन में चहलकदमी करने लगी। फोन की घंटी तब से एक बार भी नहीं बजी थी। उसने हौले से एक बार फोन को देखा और आंखें फेर ली। छोटा सा केबिन है मगर करीने से सजा सवरा लगता है। बॉस का सेंस तो काफी अच्छा है। केबिन में दीवारों पर पर्दे भी लगे हैं, पर्दे भी बड़े प्यारे हैं। पीले रंग की जमीन पर नारंगी बुंदकियां हैं। केबिन की पिछली दीवार पर बड़ा सा पोस्टर है, उसमें एक जंगल है, जंगल में बड़ा सा पेड़ और छोटा सा कॉटेज है। पोस्टर की ठीक सामने रिवॉल्विंग चेयर, चेयर के सामने बॉस की बड़ी सी मेज जिस पर 2-2 फोन, छोटा सा कंप्यूटर, एक पेन स्टैंड और प्लेट से ढका हुआ शीशे का ग्लास जिसमें पानी है, कुछ छिटपुटे फाइलें भी रखी हुई हैं। बड़ी मेज के बगल में छोटी सी मेज सेक्रेटरी के लिए। संयुक्ता कुर्सी पर जाकर बैठ गई और मुस्कुराकर सोचने लगी की एक और खूबसूरत सेक्रेटरी बगल वाली कुर्सी पर। तभी उसकी सोच को ब्रेक लगा। ऑफिस का कोई बाबू दरवाजा खोलकर फाइल लिए खड़ा था। उसने सोचा उसे क्या करना चाहिए। उसने कायदे से उसे फाइल ली और बॉस की मेज पर एक रख दी। दोनों में मुस्कुराहट का आदान प्रदान हुआ। उसने कहा, मैं चिरंजी लाल, यहाँ का सेक्शन ऑफिसर। संयुक्ता भी मुस्कुराई और बोली, मैं संयुक्ता अग्रवाल, बॉस की नई सेक्रेटरी। जानता हूँ, उसने कहा। इसके आगे दोनों को कुछ सूझ नहीं रहा था कि क्या बातें करें। चिरंजी लाल दो पल खड़ा रहा, मुस्कुराहट बिखेरते रहा। संयुक्ता भी मूर्खों की तरह होठ फैलाए खड़ी थी। फिर वह मुस्कुराते मुस्कुराते बोला, चलता हूँ, और चला गया। संयुक्ता की एक सरता कुछ तो टूटी, लेकिन पहले दिन का अनुभव थका देने वाला था। फोन की घंटी बिल्कुल चुप थी। वह फिर जाकर अपनी कुर्सी पर बैठ गई। अचानक उसे रंभा की याद आई। रंभा भी उससे पहले कभी किसी और ऑफिस में सेक्रेटरी थी। उसका बॉस बड़ा भला था, रंभा को उसके घर से पिक करता था, कभी कभी क्या प्रायः घर छोड़ देता था, मौके बेमौके होटल भी ले जाता था। रंभा उसकी प्रशंसा किया करती थी। लेकिन साल बीतते ही एक दिन बॉस की पत्नी दफ्तर आई और पूरे ऑफिस स्टाफ के सामने उसके बाल पकड़कर बाहर निकाल दिया और उससे कहा, मुड़कर इस ऑफिस की तरफ मत देखना। रंभा की पंद्रह दिन की सैलरी बनती थी, वो उसे वो भी नहीं लेने दी। दोस्तों, इसके आगे की कहानी हम अगले पार्ट में सुनेंगे। तो आज के लिए अलविदा। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का पूरे दिल से स्वागत है मेरे शो में, जिसका नाम है सुनहरी यादें, मेरे यानी आभा के साथ। मेरे प्यारे दोस्तों, मैं शो पे आपको वो कहानियाँ सुनाऊंगी जो आपको अपनी सी लगेगी, जो आपको ले जाएगी उन पुरानी गलियों में, उन पुराने मकानों में जहाँ बसती है सुनहरी यादें। आज जो मैं आपको कहानी सुनाने जा रही हूँ, वो एक ऐसी कथाकार की है जिनकी कहानियाँ हंस कथा देश समेत सभी प्रतिष्ठित पत्रिकाओं में प्रकाशित होती रही हैं। इनके लिखे रेडियो नाटक पे भी आकाशवाणी में प्रसारित होते रहे हैं। और जो मैं आज आपको कहानी सुनाने जा रही हूँ, उसका नाम है पहला दिन। और मेरे एपिसोड का भी तो पहला दिन है ना। इस कहानी को हम दो पार्ट में सुनेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। ये कहानी है संयुक्ता की, जो अपने सपनों का पंख लिए बड़े अरमानों से अपने घर से निकलती है ऑफिस की ओर, जहाँ आज उसका पहला दिन था। संयुक्ता ने हैंडशेक के लिए दायां हाथ आगे बढ़ाया और बोली, यहाँ सेक्रेटरी पद पर उसकी नियुक्ति हुई है। सामने रिवॉल्विंग चेयर पर बैठे प्रौढ़ सर्जन क्षण भर उसका हाथ पकड़े हुए सोचते रहे और फिर पूछा, संयुक्ता अग्रवाल? यस सर। और प्रौढ़ सर्जन ने उसे बगल की कुर्सी की ओर इशारा किया। छोटा सा थैंक यू बोलकर वह उछल के बैठ गई। सेक्रेटरी का जॉब स्वीकार करने से पहले उसने बहुत सोचा विचारा था। उसके दोस्तों ने उसे तरह तरह से डराया था, लेकिन ये जॉब उसे आसानी से मिल रही थी। ये प्रौढ़ सर्जन यानी चंद्रशेखर बजाज पार्थ अंकल के मित्र हैं। इन्हें कुशल और शार्प ब्रेन की लड़की सेक्रेटरी के तौर पर चाहिए थी, जो उन्हें कॉफी पिलाने से लेकर उनके दफ्तरी उलझनों पर भी विचार विमर्श कर सके। पार्थ अंकल ने संयुक्ता की सिफारिश उससे पूछे बगैर कर दी थी। प्रारंभिक फॉर्मेलिटीज पर भी उन्हें पूरी करने की जरूरत महसूस न हुई। इस तरह सूल्ले की तरह हाथ से टपक गई नौकरी को कोई इनकार करना मूर्खता ही समझेगा, और संयुक्ता मूर्ख नहीं है। शुक्रवार को पार्थ अंकल ने उसे लेटर दिया और सोमवार को उसे ज्वाइन करना था। दो दिन वो उधेड़ बुन में बैठी रही। इस तरह के बूढ़े बॉसों के विषय में, उनकी कुंठाओं के विषय में तरह तरह की कहानियां उसने सुनी थी। थोड़ा डर लग रहा था, मगर सोचा चलो देखते हैं। और अभी वह मिस्टर बजाज के बगल की कुर्सी पर बैठ गई। मिस्टर बजाज ने उसे कुछ भी नहीं पूछा, बस अपने आगे लगे फाइलों में एक फाइल खींची और देखते देखते दस्तखत करने लगे। संयुक्ता एक घंटे तक चुपचाप बैठी हुई थी, फिर कसमसाने लगी, कैसा बॉस है, एक बार मुड़कर भी नहीं देखता कि कमरे में कोई और भी है। फीमेल परफ्यूम की सुगंध उड़ उड़कर नथुनों में पहुंच तो रही होगी, फिर भी जैसे मानो किसी की उपस्थिति का उसे एहसास ही ना हो रहा हो। अरे वो सेक्रेटरी के तौर पे पहली बार आई है, उसे कुछ तो पूछना था, कहाँ से पढ़ी है, कौन से डिग्रियाँ है, वगैरह वगैरह। विचित्र व्यक्ति है, या हो सकता है जानबूझकर अपने आप को व्यस्त दिखा रहा हो पहला इम्प्रेशन डालने के लिए। संयुक्ता तरह तरह की सोच में लगी हुई थी और मुंह बना रही थी। आज उसका पहला दिन था, उसे बॉस के बारे में कुछ भी मालूम नहीं था। बॉस का क्या स्वभाव है, उसे क्या पसंद है, सच में ये बातें पर्थ अंकल से उसे पहले ही पूछ लेनी चाहिए थी, तब वो बॉस के बारे में कुछ सही अंदाजा लगा सकती थी। संयुक्ता की बेचैनी से बेखबर बॉस अपनी फाइलों में अभी भी व्यस्त थे। एक घंटे बाद फाइलें खत्म हुई तो बॉस ने घंटी बजाई, चपरासी आया, उससे दो कॉफी मंगवाई। संयुक्ता ने फिर बुरा सा मुंह बनाया, बॉस ने उससे पूछा भी नहीं कि वो कॉफी पीती है या नहीं और दो कॉफी मंगवा ली। उसे कॉफी बिल्कुल अच्छी नहीं लगती थी, अब वह भला ना कैसे कहेगी, ना कहना अशिष्टता होगी। बॉस तब तक फोन पे बिजी हो चुके थे। संयुक्ता को ये सब अपनी उपेक्षा लग रही थी। अरे एक डेढ़ घंटे से वह बैठी है, उसे कुछ काम तो देना था, नहीं तो कम से कम काम के विषय में कुछ पूछना या बताना ही चाहिए था। लेकिन क्या करे, नौकरी करने आई है तो जैसी स्थिति आएगी उसके अनुकूल व्यवहार करना ही पड़ेगा, यानी उसे झेलना ही पड़ेगा। वह बैठी बैठी चपरासी की प्रतीक्षा करने लगी कि अब वह आएगा और कड़वा कड़वा सा कुछ लाएगा और वो कड़वी सी चीज उसे पीनी पड़ेगी। चपरासी ज़्यादा देर नहीं वेट करने दिया उससे, वह शीघ्र आ गया। ट्रे में कॉफ़ी पॉट, शुगर और अलग अलग पॉट रखे हुए थे, क्योंकि अब वो सेक्रेटरी है, उसे उठकर पूछना होगा, एक्सक्यूज मी सर, आप कितनी शुगर लेंगे, बॉस बताएंगे दो चम्मच, तो वो दो चम्मच शुगर डालकर उनसे कॉफ़ी बनाएगी। पर उसका सोचा हुआ रखा का रखा ही रह गया, उसे कुछ करना ही नहीं पड़ा। चपरासी ने बिना कुछ पूछे बिना शुगर की कॉफ़ी बॉस की ओर बढ़ा दी और उससे पूछा कितनी शुगर। वह कैसे बताती कि कितनी शुगर लेगी, उसने तो पहले कभी कॉफ़ी पी भी नहीं थी, कड़वी होगी, इसी संभावना से उसने कह दिया दो चम्मच। चपरासी ने कॉफ़ी बनाकर उसके टेबल पर रख दी, अब उसे कॉफ़ी पीनी थी। उसने फिर एक बुरा सा मुंह बनाया, कैसा बॉस है, चपरासी से कह सकता था तुम जाओ ये कॉफ़ी बना लेगी, लेकिन नहीं, कितने प्रेम से बिना शुगर की कॉफ़ी पी रहे हैं। बॉस को स्वाद लेकर कॉफ़ी पीता देख उसने भी कॉफ़ी का मग होठों से लगाया, सच में कड़वा। वह हर घूंट के साथ पार्थ अंकल को गाली देने लगी, लेकिन पूरा मग पी भी गई। उसने सोचा इतनी देर में उसने पार्थ अंकल को कितनी गालियाँ दी होंगी, शायद 20-25 तो ज़रूर, यानी मौका पड़ने पे गालियाँ देने की तालीम भी उसमें है, अच्छी सेक्रेटरी में हर प्रकार के गुण होने चाहिए। मुंह बनाते बनाते अचानक उसके होंठ फैल गए, यस सर। बजाज साहब उसकी टेबल से सटकर खड़े थे, गौर से उसे देख रहे थे, आंखों में चंचलता थी। कुर्सी के नीचे संयुक्ता के पैर थर थर आने लगे, झट से उठकर वो खड़ी हो गई, मुंह से खुद ब खुद निकल पड़ा यस सर। बॉस कुछ उसे यूं देख रहे थे और वो सोच रही थी बुढ़ा उसे देख के क्या सोच रहा होगा, सोचता होगा मेरी सेक्रेटरी खूबसूरत है। लेकिन संयुक्ता की सोचों के वाचाल होने से पहले ही बॉस के गले से गंभीर स्वर फूटा, मैं बाहर निकल रहा हूँ, जब तक न लौटूं यहीं रुकना, फ़ोन कॉल्स आए उन्हें रिसीव करना और मैसेज नोट कर लेना। यस सर, बिना कुछ सोचे समझे उसके मुँह से निकला, मानो सेक्रेटरी होने की तो उसे जन्म से ही आदत है, यस सर उसके मुंह पे बैठा हुआ था। अपनी बात कह के बॉस मुस्कुराए, कोई दोस्त उसके पास होती तो उसकी कमर पे थाप लगाकर कहती ये साला मुस्कुराता क्या धांसू है। लेकिन पास में कोई था नहीं, इसलिए यह सोचकर रह गई कि बूढ़ों की हंसी रहस्यमय है, कितनी बातें उसमें छुपी लगती हैं। और बॉस निकल गया। घड़ी में अभी 1:30 हुए थे। वह कमरे में अकेली थी, आराम से अपनी कुर्सी पर अधलेटी हो गई, टेबल के नीचे पैर पसार लिए, अपनी आंखें टेलीफोन पे जमा ली। बीच बीच में वो घड़ी की तरफ देख रही थी। घड़ी की सुइयां इतने धीरे घूम रही थी कि पल भर को उसे लगा कि कहीं घड़ी खराब तो नहीं हो गई, लेकिन फिर उसने निगाहें फोन पे जमा ली, ऐसा ना हो कि घंटी बजे और वो मिस कर दे। फिर उसे हंसी आई, अरे घंटी बजेगी तो क्या आंखों से सुनेगी। फिर उसने अपनी आंखें फोन से हटा ली, वो थकने लगी थी। पल भर को उसने आंखें बंद की, मगर तुरंत लगा ये गलत है, सेक्रेटरी को आलसी नहीं चाक चौबंद होना चाहिए, कहीं इसी बीच बॉस आ गए तो, उसे सोता समझ लिया तो। लेकिन बैठे बैठे वो उबने लगी थी। वह कुर्सी खिसकाकर बाहर निकलकर आई, छोटे से केबिन में चहलकदमी करने लगी। फोन की घंटी तब से एक बार भी नहीं बजी थी। उसने हौले से एक बार फोन को देखा और आंखें फेर ली। छोटा सा केबिन है, मगर करीने से सजा सवरा लगता है। बॉस का सेंस तो काफी अच्छा है। केबिन में दीवारों पर पर्दे भी लगे हैं, पर्दे भी बड़े प्यारे हैं। पीले रंग की जमीन पर नारंगी बुंदकियां हैं। केबिन की पिछली दीवार पर बड़ा सा पोस्टर है, उसमें एक जंगल है, जंगल में बड़ा सा पेड़ और छोटा सा कॉटेज है। पोस्टर के ठीक सामने रिवॉल्विंग चेयर, चेयर के सामने बॉस की बड़ी सी मेज जिस पर दो दो फोन, छोटा सा कंप्यूटर, एक पेन स्टैंड और प्लेट से ढका हुआ शीशे का ग्लास जिसमें पानी है, कुछ छिटपुटे फाइलें भी रखी हुई हैं। बड़ी मेज के बगल में छोटी सी मेज सेक्रेटरी के लिए। संयुक्ता कुर्सी पर जाकर बैठ गई और मुस्कुराकर सोचने लगी कि एक और खूबसूरत सेक्रेटरी बगल वाली कुर्सी पर। तभी उसकी सोच को ब्रेक लगा। ऑफिस का कोई बाबू दरवाजा खोलकर फाइल लिए खड़ा था। उसने सोचा उसे क्या करना चाहिए। उसने कायदे से उसे फाइल ली और बॉस की मेज पर एक रख दी। दोनों में मुस्कुराहट का आदान प्रदान हुआ। उसने कहा, मैं चिरंजी लाल, यहाँ का सेक्शन ऑफिसर। संयुक्ता भी मुस्कुराई और बोली, मैं संयुक्ता अग्रवाल, बॉस की नई सेक्रेटरी। जानता हूँ, उसने कहा। इसके आगे दोनों को कुछ सूझ नहीं रहा था कि क्या बातें करें। चिरंजी लाल दो पल खड़ा रहा, मुस्कुराहट बिखेरते रहा। संयुक्ता भी मूर्खों की तरह होठ फैलाए खड़ी थी। फिर वह मुस्कुराते मुस्कुराते बोला, चलता हूँ, और चला गया। संयुक्ता की एक सरलता कुछ तो टूटी, लेकिन पहले दिन का अनुभव थका देने वाला था। फोन की घंटी बिल्कुल चुप थी। वह फिर जाकर अपनी कुर्सी पर बैठ गई। अचानक उसे रंभा की याद आई। रंभा भी उससे पहले कभी किसी और ऑफिस में सेक्रेटरी थी। उसका बॉस बड़ा भला था, रंभा को उसके घर से पिक करता था, कभी कभी क्या प्रायः घर छोड़ देता था, मौके बे मौके होटल भी ले जाता था। रंभा उसकी प्रशंसा किया करती थी। लेकिन साल बीतते ही एक दिन बॉस की पत्नी दफ्तर आई और पूरे ऑफिस स्टाफ के सामने उसके बाल पकड़कर बाहर निकाल दिया और उससे कहा, मुड़कर इस ऑफिस की तरफ मत देखना। रंभा की पंद्रह दिन की सैलरी बनती थी, वो उसे वो भी नहीं लेने दी। दोस्तों, इसके आगे की कहानी हम अगले पार्ट में सुनेंगे। तो आज के लिए अलविदा।